दिन भर 21 अक्टूबर रविवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने फहराया लाल किले पर तिरंगा।
मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस की विरासत पर दावा ठोकना क्या भाजपा की राजनीतिक रणनीति है?
आप सब लीडर्स जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारी आजादी की लड़ाई के, सबको कोऑप्ट कर लीजिए, एक तो ये मकसद है।
और भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 6 आम नागरिकों की मौत। खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। 21 अक्टूबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया। हर साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन 21 अक्टूबर को यहां से तिरंगा फहराने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उत्तरी ताइवान में एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 8 डब्बों वाली इस ट्रेन में उस वक्त करीब 360 यात्री सवार थे। हादसा येलन शहर के जिनमा स्टेशन के नज़दीक स्थानीय समयानुसार शाम के 6:50 पर हुआ। हादसे की जो तस्वीरें मिल रही हैं उनमें ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतरे हुए और कुछ डिब्बे पलटे हुए दिख रहे हैं। कई डिब्बों में अभी भी यात्री फंसे बताए जाते हैं। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार हादसे से ठीक पहले एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर चिंगारी उठती दिखी और धुआं निकला। सऊदी अरब पर पत्रकार जमाल खाशुजी की हत्या के बारे में और जानकारी के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी सरकार का कहना है कि खाशुजी तुर्की के इस्तांबुल स्थित वाणिज्य दूतावास में पहुंचे थे और वहां भीतर छोटी सी लड़ाई के बाद उनकी मौत हो गई थी। इधर कनाडा का कहना है कि उन्हें सऊदी सरकार की इस दलील पर कतई यकीन नहीं है। हथियारों के निर्यात नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संसदीय समिति के सदस्य और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता नाइजेल इवांस का कहना है कि दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि ये दिल दहला देने वाली घटना है और सदमे के समान है और इस बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि अरब देशों में बतौर कूटनीतिज्ञ काम कर चुके और फिलहाल अरब डाइजेस्ट के संपादक ओलिवर माइल्स का कहना है,
It's just conceivable, I suppose, that somebody acted without proper authority.
ये पूरी तरह विश्वास योग्य दलील है। मुझे लगता है कि किसी ने बिना उचित अधिकार के काम करने का फैसला किया। ऐसा पहले भी हो चुका है, सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड और दूसरे देशों में ऐसा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इस दलील को नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में सऊदी अरब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि तुर्की दावा कर रहा है कि उनके पास 2 सप्ताह पहले क्या हुआ इसके सबूत हैं, फिलहाल वो थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर तुर्की के पास जो जानकारी है उसे वो सार्वजनिक कर देता है तो सऊदी अरब झूठा साबित हो जाएगा। अरब डाइजेस्ट के संपादक ओलिवर माइल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इजरायली कैबिनेट ने कहा है कि वेस्ट बैंक में मौजूद बोडोविन अरब जनजातीय समूह के लोगों के गांव खान अल अहमर खाली कराने की योजना को फिलहाल कुछ सप्ताह के लिए रोका जा रहा है। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मुनचिन से मुलाकात के बाद कहा था कि खान अल अहमर को खाली कराया जाएगा और इस काम को मुलतवी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इसराइली कैबिनेट के फैसले पर गांव के निवासी अहमद अबू दाहुक ने कहा कि इसराइली प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे इसकी काफ़ी चिंता है क्योंकि कब्जे के समय इसराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान नहीं किया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग सचेत रहें और खान अल अहमर और ऐसी दूसरी जगहों पर नज़र बनाए रखें। आप इसराइल के सभी बयानों पर इस तरह आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। खान अल अहमर के निवासी अहमद अबू दाहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की शाम की सभा दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसकी 75वीं सालगिरह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक नए पुरस्कार का ऐलान किया, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और बोस की विरासत पर भी दावा ठोंका। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेसी नेता रहे सुभाष चंद्र बोस को लोग प्रधानमंत्री मोदी की वजह से नहीं जानते, पहले से जानते हैं। नवीन नेगी की रिपोर्ट सुनिए।
मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यह जयकारे आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवा रहे थे। मौका था नेताजी द्वारा गठित की गई आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ का। कार्यक्रम की शुरुआत में आजाद हिंद फौज का हिस्सा रह चुके स्वतंत्रता सेनानी लालटी राम ने प्रधानमंत्री मोदी को वह टोपी पहनाई जो नेताजी की पहचान समझी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले सालों में सेना और पुलिस के जवानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हर साल एक सम्मान दिया जाएगा। अपने संबोधन में मोदी ने कांग्रेस पर नेताजी और सरदार पटेल जैसी विभूतियों को भुलाने का आरोप लगाया।
ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का बरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार इस स्थिति को बदल रही है।
पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि इन तमाम नेताओं को देश हमेशा याद रखता है और किसी एक पार्टी को इन्हें याद करवाने की जरूरत नहीं है।
सुभाष चंद्र बोस जी को मोदी जी के कारण देश जानता है, अगर ये दावा करते हैं, सरदार पटेल को मोदी जी के कारण देश जानता है, अगर वो ये दावा करते हैं, तो ये उन महापुरुषों की तौहीन है। देश उनका आभारी है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोग लगातार मनाते रहे हैं, उनको नमन करते रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित होती रही है। ये मोदी जी के शासनकाल में नहीं हुआ, ये पहले से हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को देश के बाहर और भीतर मौजूद राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की सलाह भी दी।
आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले।
प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर पटेल और भीमराव अंबेडकर के नाम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की कि इतिहास के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और महापुरुष भले ही एक वक्त में कांग्रेस के पाले में रहे हों, लेकिन अब बीजेपी ही उन्हें सबसे ज्यादा याद करती है और उनका सम्मान करती है। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
इस खबर के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए नवीन नेगी ने ही संपर्क किया वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से और पूछा कि सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक विरासत पर भाजपा और संघ परिवार की कितनी दावेदारी बनती है।
देखिए, मजबूत हो ना हो, वो एक मौका भी नहीं चूक रहे हैं कि जैसे अब ये 75th एनिवर्सरी थी, 75वीं एनिवर्सरी आजाद हिंद फौज की, तो उस मौके को इस्तेमाल करके लाल किले में फ्लैग होस्टिंग करना और एक म्यूजियम डिक्लेयर करना और बैरक नंबर 3 में, जहाँ की वहाँ लोगों के खिलाफ, आजाद हिंद फौज के लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ था, वो सब एक एक चीज को उजागर करना। और मेन मुद्दा क्या है जो सामने आ रहा है, एक तो है कि आप सब लीडर्स जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारी आजादी की लड़ाई के, सबको कॉप्ट कर लीजिए, एक तो ये मकसद है। दूसरा है कि गांधी नेहरू परिवार पर आक्रमण करने का मौका मिलता है कि ये परिवार सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा है, औरों के बलिदान को इसने तूल नहीं दी है और वो बलिदान, उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी को भूल गया है। तो तो ये पॉलिटिकल पॉइंट्स जो है ना, बार बार जो मौका हाथ लगता है, नरेंद्र मोदी हो, संघ के लोग हो, ये करने की चेष्टा कर रहे हैं।
तो महापुरुषों की जो राजनीति है, इसमें क्या देखते हैं कि क्या फायदा मिल सकता है बीजेपी को, क्या वोट बैंक की कोई, इसमें कोई वोट बैंक है जो जुड़ा हुआ हो? खासतौर पर अगर मैं आज सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, एक अगर हम पटेल को देखते हैं तो फिर भी वहां पर एक वोट बैंक है, अंबेडकर है तो वहां भी एक वोट बैंक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या वोट बैंक होगा, किस तरीके से फायदा मिल सकता है?
देखिए, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल से तो बहुत ही इमोशनल लिंक है ना, वो तो नाम लेते ही बंगाल के लोग तो एकदम चार्जअप हो जाते हैं, आज भी तो इमोशनल मुद्दा तो है बंगाल के लिए, बंगाल में भाजपा चाह रही है अपनी पैठ बैठाना। और सुभाष चंद्र बोस ने ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काम किया, तो अब ये जो लिंकेज दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम भी ये जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं जिस पे सुभाष चंद्र बोस ने ध्यान केंद्रित किया था, हम भी इनको मेनस्ट्रीम में ला रहे हैं, इनको महत्व दे रहे हैं, इनकी विकास को महत्व दे रहे हैं। तो वो ईस्टर्न इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वेस्ट में गुजरात में पटेल हैं, ऑल इंडिया अंबेडकर हैं दलितों के लिए, और ईस्ट में बोस को एक नए तरीके से आइकॉन के रूप में पेश करना चाह रहे हैं।
कांग्रेस का क्या रुख समझती हैं आप, कि वो क्यों पीछे हो रही है अपनी ही विरासत को संभालने में?
देखिए, कांग्रेस की थिंकिंग जो है ना, एजेंडा सेटिंग नहीं है, बहुत सालों से नहीं है, वो रिएक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ होता है रिएक्ट करते हैं, राफेल होता है रिएक्ट करते हैं, मोदी कुछ बोलते हैं रिएक्ट करते हैं, पहले भी आज नहीं यूपीए के दौरान भी पॉलिटिकली रिएक्शन रहा है सिर्फ। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल थिंकिंग में एक खामी तो है, कमी तो है। कैसे आप देश के लिए एजेंडा सेट करेंगे, आपके जो नेता हैं, आपकी विरासत में जो लोग हैं, महापुरुष हैं, सबको फुली यूज करना, ये तो बीजेपी इसमें तो माहिर साबित हो रही है।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। अमृतसर हादसे के बाद पहली बार आज उसी पटरी से जब एक ट्रेन गुजरी तो उसकी गति बहुत धीमी थी और ड्राइवर ने जाने कितनी बार, कई बार हॉर्न बजाया, और इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि घटना से नाराज प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक से दूर रहें। दशहरे के दिन रावण दहन के वक्त यहाँ खड़े होकर लोग रावण दहन देख रहे थे और वो एक ट्रेन की चपेट में आ गए थे जिसमें कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी संवाददाता सरबजीत धारीवाल आज एक शमशान घाट भी पहुंचे जहां मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अमृतसर से सरबजीत धारीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक चलेंगे, लेकिन पहले ये आवाज़ सुनिए, ये उस पिता की आवाज़ है जिसने आज अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार किया है।
आप यूपी में कहाँ से रहने वाले हो?
लखनऊ।
कितने साल से?
अमेठी।
अमेठी,
अच्छा। यहाँ तो डेढ़ दिन हो गया।
नहीं, कितने दिन से अमृतसर में रह रहे हो?
यहाँ तो 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर हो गया।
बेटे का नाम क्या था?
श्रवण कुमार।
हाँ
जी।
तो पढ़ाई वगैरह करके अभी मतलब काम धंधे की तलाश में होगा?
हाँ जी, हाँ जी।
तो कब आपको पता चला कि इसका ऐसे हुआ कि घर पे?
सर जी, मेरे को इसका साथ वाले वो जोड़ा फाटक जो ने दिन, हाँ, वो हाँ, नहीं था,
हाँ।
तो उस दिन आके कोमा मोबाइल में फोटो दिखाए थे तो पता चला कि ये तुम्हारा मुंडा है सरवन कुमार, हाँ। हम कहें ना जी,
हाँ।
तो फिर वही लगता घर से रोवा था सब जने गई नुआ, हाँ। अरे सर जी क्या करें अब, ना तो या तो फिर छुरी मार ले हम भी मर जाएं, यही लगा है
सर पे, सर पे।
हाँ जी।
बाकी कोई कट नहीं था?
नहीं,
पैर भी कट गया,
पैर भी एक।
अब सीधे चलते हैं अमृतसर जहां से सरबजीत धारीवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सरबजीत, आप जब से ये हादसा हुआ है वहां हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस घटना पर आज क्या ताजा जानकारी आपके पास?
देखिए, आज जो है रविवार था, रविवार के दिन भी जो जो लोग बचे थे जिनकी जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके जो परिजन थे वो दूसरे राज्य से, खासतौर पर यूपी के काफी लोग थे, तो उनके जो परिजन आए तो उनका आज यहाँ पर संस्कार किया गया। माहौल देखिए, माहौल बहुत ज्यादा यहाँ पर खौफ भी है, लोगों में गुस्सा भी है और लोग दुखी भी हैं कि इतने लोगों की जान चले गई, और उसके बाद जो यहाँ पर राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, एक दूसरे के ऊपर जो दोष प्रतिदोष चल रहे हैं उसको लेकर भी लोग हैं। पर जब हम उस इलाके में जब जाते हैं, आज भी हम उस इलाके में गए तो लोग गुस्से में जरूर थे, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी भी हुई वहां पे, कुछ लोगों ने आकर जो है नारेबाजी की, तो उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि समस्या वहीं की वहीं है। आज जब फिर से एक पटरी पर ट्रेन, क्योंकि वो ट्रैक था वो चालू कर दिया गया और वहां पर आज पुलिस बहुत मौजूद थी, स्पीकर लगे हुए थे बड़े बड़े, जो लोग वहां पे ट्रैक पे बैठे थे कि आप यहां से हट जाइए, यानी कि आज वो मुश्तैदी दिखी। पर जब हम जाते हैं शुक्रवार जब दशहरे वाले दिन, तो उस दिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था और इसी का नतीजा यही निकला कि बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। पर फिलहाल ये है कि लोगों को इस सदमे से बाहर निकलने का अभी काफी वक्त लगे, क्योंकि शमशान घाट में भी हम लोग गए तो वहां पर जो वहां कर्मी काम करते हैं तो वो भी कह रहे थे कि हमारे भी आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि आमतौर पर वो बहुत सारे लोगों का।
सरब जी, बहुत संक्षेप में अगर आप ये भी बता सके, हमें पता है कि आपकी नवजोत कौर सिद्धू से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई और वो भी आरोपों के दायरे में रही, उनका क्या कहना है, उनसे क्या बात हुई आज आपकी?
देखिए, उन्होंने कहा कि वो कुछ वक्त के लिए वहां पर गई थी और वहां पे बकायदा अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भी आप ट्रैक से हट जाइए, पर लोग क्योंकि ज्यादा थे और उसके बाद वो चले जाते हैं उस कार्यक्रम से और ये हादसा होता है। पर फिलहाल जो है जो उनका कहना है कि ये जो गलती कहीं ना कहीं है वो गलती है, इसे हमें सबक लेना होगा और जो केंद्र सरकार है, रेलवे है, उसकी जिम्मेवारी भी इस पूरे मामले में है, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि कह सकते हैं कि इस बात पर वो बोले, पर जो आमतौर पर बयानबाजी होती है, पर जब तक
रेलवे पर उन्होंने एक बार फिर ठीकरा फोड़ा है। बहुत शुक्रिया सरबजीत धारीवाल, हमसे जुड़े थे अमृतसर से। अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान एक धमाके में 6 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा बलों से इसी मुठभेड़ में 3 चरमपंथी भी मारे गए हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुनिए।
श्रीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम के लारो इलाके में एक मुठभेड़ स्थल के नजदीक एक विस्फोट में 6 आम नागरिक मारे गए हैं। यह घटना इतवार को उस समय पेश आई जब पुलिस और सुरक्षा बलों ने लारो इलाके को घेरे में लिया था, जहां पुलिस के मुताबिक कई चरमपंथी छुपे हुए थे। पुलिस ने दावा किया है कि लारो इलाके में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 3 चरमपंथी भी मारे गए हैं। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर स्थल पर एक विस्फोट हुआ जिसमें 6 आम नागरिक मारे गए हैं। पुलिस का कहना था कि मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोग मुठभेड़ स्थल पर जमा हो गए थे, जिस दौरान विस्फोट में मौके पर ही 3 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत करार दिया है। एनकाउंटर स्थल पर 6 आम नागरिकों के मारे जाने पर जिला कुलगाम के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर शमीम ने BBC को बताया।
उसके अलावा जो तसादुम के बाद जो एनकाउंटर साइट है वहां पे लोग जमा हो गए तो फिर एक धमाका वहां हो गया जो वहां से बारूदी मवाद फट गया, उससे 5 कैजुअल्टीज अभी तक जो हमें ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, अनकन्फर्म्ड एक है लेकिन अभी उसका पता नहीं है, अलबत्ता 5 के नाम हमारे पास तो मारे गए हैं, कोई 22 के करीब सकते।
इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों और स्थानीय नौजवानों के बीच झड़पों की भी खबरें हैं, जिन झड़पों में करीब 2 दर्जन लोग घायल बताए जाते हैं। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जो घायल 3 आम नागरिक अस्पताल में मृत्यु करार दिए गए हैं उनकी मौत विस्फोट में हुई है या सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में मारे गए 6 आम नागरिकों के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हम कब तक कश्मीर में जमीनी हकीकत से अपनी आंखें चुरा लेंगे। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कुलगाम में मारे गए 6 आम नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। कुलगाम में आम नागरिकों की मौतों के खिलाफ कश्मीर के अलगाववादियों ने कल कश्मीर बंद बुलाया है। कश्मीर में बीते कई वर्षों से देखा गया है कि जब भी किसी जगह सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है तो स्थानीय लोग मुठभेड़ स्थल के नजदीक जाकर चरमपंथियों को सुरक्षा बलों के घेराव से निकालने के लिए सुरक्षा बलों के साथ बिठ जाते हैं। बीते वर्षों में मुठभेड़ स्थलों पर सुरक्षा बलों के हाथों कई आम लोग मारे जा चुके हैं। कुलगाम में इन मौतों के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है और इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अपने तमाम साथियों और साधु संतों के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़े हैं। पहले इन्हें सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन शनिवार देर रात लखनऊ में सभा करने और यहां से कूच करने की इजाज़त उन्हें मिल गई। हालांकि अयोध्या में अब भी निषेधाज्ञा लागू है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
लखनऊ से अयोध्या के लिए यात्रा निकालने पर अड़े प्रवीण तोगड़िया को यात्रा की शुरुआत करने और लखनऊ में संकल्प सभा करने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन अयोध्या पहुंचने की उनकी राह में अभी भी कई कांटे दिख रहे हैं। अयोध्या जाने से पहले लखनऊ में हुई जनसभा में उन्होंने अपने मकसद के बारे में कुछ यूं बताया।
अयोध्या में मंदिर इसलिए कि मंदिर तोड़ने वाली, देश तोड़ने वाली, गाय को काटने वाली, पाकिस्तान का झंडा उठाने वाली, सेना पर पत्थर मारने वाली, जिहादी विचारधारा को मिट्टी में मिलाने का अभियान का नाम है अयोध्या में राम की जन्मभूमि।
प्रवीण तोगड़िया को शनिवार देर रात प्रशासन ने लखनऊ में सभा करने के साथ ही अयोध्या में भी एक सभा के आयोजन की अनुमति दे दी, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता बरते हुए है और फैजाबाद की सीमाओं पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। फैजाबाद के एसपी सिटी अनिल सिंह ने पत्रकारों को बताया कि यहां धारा 144 लागू है और उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
इसमें प्रशासन द्वारा धारा 144 को दृष्टिगत रखते हुए दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन है, राम बारात है हमारे सब जगह, इसलिए अनुमति नहीं दी गई है।
लखनऊ की सभा में तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और मंदिर निर्माण पर अब तक कोई कदम न उठाने को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए है और इसके जरिए वो किसानों, छात्रों और बेरोजगारों के उन मुद्दों को भी उठाएंगे जिन्हें उनसे वायदा तो किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि तोगड़िया के तेवरों को देखते हुए यही लगता है कि मंदिर और हिंदू उनके मुख्य एजेंडे में है।
1400 साल पहले अरबस्तान के लोग ऊंट पर बैठना भी नहीं जानते थे। अरे गधो, आप अरबस्तान में ऊंट पर बैठना नहीं जानते थे तब 17 लाख वर्ष पहले मेरा बाप राम तो पुष्पक विमान में घूमा करता था।
बताया जा रहा है कि तोगड़िया अपने समर्थकों के साथ 22 और 23 अक्टूबर को अयोध्या में कुछ कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 23 अक्टूबर को कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ये फैसला क्या होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी अयोध्या यात्रा पर वहां के कुछ साधु संतों के अलावा राम मंदिर के पक्षकारों ने भी सवाल उठाया है। प्रमुख पक्षकार इकबाल हाशिम को आशंका है कि तोगड़िया के आने से अयोध्या का माहौल अशांत हो सकता है।
जब भी कोई भी नेता यहां अयोध्या में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो सरकार के ऊपर उसकी निगाह भी होती है। कानून का भी राज होना चाहिए और कानून का राज है। कप्तान साहब ने कहा है कि जो है फैजाबाद जिले में कानून का राज रहेगा।
बहरहाल तोगड़िया अपने समर्थकों के साथ अयोध्या यात्रा शुरू कर चुके हैं। इसके पहले प्रशासन ने उन्हें यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी और इसीलिए गिरफ्तारी की आशंका से वो भूमिगत भी हो गए थे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका रूस के साथ परमाणु हथियार संधि से बाहर आएगा। ट्रंप ने रूस पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ऐलान किया है। वहीं रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा है कि ट्रंप परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर पीछे लौट रहे हैं। ब्यौरा सुनिए प्रियंका धीमान से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को 1987 में हुए मध्यवर्ती परमाणु बल संधि से बाहर करने की बात करने के बाद अब रूस ने कहा है कि वो इस बेहद खतरनाक कदम की सख्त प्रतिक्रिया देगा। समझौते से बाहर होने की मंशा जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा, रूस इसका लंबे समय से उल्लंघन कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, रूस ने इस समझौते का उल्लंघन किया है, वो कई सालों से ऐसा कर रहा है। मैं नहीं जानता राष्ट्रपति ओबामा ने इस समझौते पर फिर से बात क्यों नहीं की या इससे बाहर क्यों नहीं हुए। हम उन्हें परमाणु समझौते का उल्लंघन करके वो हथियार बनाने नहीं देंगे जो हम नहीं बना सकते। हमने हमेशा इस समझौते का पालन किया, लेकिन रूस ने दुर्भाग्यवश इसका सम्मान नहीं किया, इसलिए हम इसे रद्द करके इससे बाहर हो रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता 30 साल पहले हुआ था। इसके तहत परमाणु हथियार की मारक दूरी और क्षमता को सीमित किया गया था। हथियार नियंत्रण मामले के विशेषज्ञ डेरिल किम्बाल का कहना है कि ट्रंप इस समझौते से बाहर होके गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस मध्यवर्ती परमाणु बल संधि की शर्तों का पालन नहीं कर रहा। उसने जमीन से लॉन्च की जा सकने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, चूंकि रूस उल्लंघन कर रहा है इसलिए हम बाहर हो रहे हैं। इस तरह इस अहम समझौते से टूटने का दोष अमरीका के हिस्से आ रहा है। वहीं नेटो में अमरीका के पूर्व राजदूत निकोलस बर्न्स का मानना है कि समझौते से अलग होने के बजाय कूटनीतिक दबाव बनाना ज्यादा कारगर होगा। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम रूस से बात कर पाएंगे, और अगर सभी नेटो देश हमारे पीछे खड़े हुए तो हम और मजबूती से ये बात कर पाएंगे। रूस से समझौते का पालन करवाने के लिए अमेरिका ने इससे अलग होकर ये दिखा दिया है कि वो इन हथियारों को सीमित करने वाले एक तार्किक समझौते से बाहर हो रहा है। रूस ने भी ट्रंप के इस कदम को बेहद खतरनाक बताते हुए प्रतिक्रिया देने की बात कही है। वहीं बीबीसी के सुरक्षा और कूटनीतिक संवाददाता का मानना है कि ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर में हथियार नियंत्रण करने के अभियान को झटका लगेगा। इसका असर 2021 में समाप्त हो रहे एक अन्य अहम परमाणु समझौते स्टार्ट पर भी पड़ सकता है। रूस और अमेरिका परमाणु हथियारों में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, और इनके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है।
ब्यौरा सुना रही थी प्रियंका धीमान। और अब समय है खेल समाचारों का। आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश जी, आज पहला वनडे मैच है भारत और वेस्टइंडीज के बीच, और लक्ष्य तो बहुत मजबूत दिया वेस्टइंडीज ने।
जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि गुवाहाटी जहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है रनों की घाटी बन गया है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 322 रन 8 विकेट पर वेस्टइंडीज ने बनाए, थोड़ी सी खुशी उन्हें ज़रूर मिली होगी, लेकिन अब देखिए क्या हाल है। चौके छक्कों की बरसात और कप्तान विराट कोहली के बल्ले से 104 गेंदों पर 139 रनों की नाबाद शतक पारी निकल चुकी है, तो उधर दूसरे छोर पर रोहित शर्मा भी शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, केवल 6 रन दूर हैं, 94 रन बना चुके हैं।
और आप देखें कि रोहित शर्मा पहले खेलने आए, विराट कोहली तीसरे नंबर पे खेलने आए, लेकिन जो रनों का अंतर है 139 रन विराट कोहली इस समय बना चुके हैं और 96 रन है रोहित शर्मा के।
जी हाँ बिल्कुल, और दरअसल जो विराट कोहली की फॉर्म है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि रोहित शर्मा ने भी एशिया कप में अपना दमखम दिखाया था, और आज शिखर धवन भाग्यशाली नहीं रहे क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं निकले, वो केवल 4 रन नहीं बना सके। दूसरी तरफ अगर वेस्टइंडीज़ की बात की जाए तो बहुत ही शानदार पारी खेली शिमरॉन हेटमायर ने, जिन्होंने 78 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 106 रन बनाए, 6 चौके और 6 छक्के, यानी जो
शानदार बल्लेबाजी। और अभी रोहित शर्मा का भी शतक हो गया।
जी, जो विकेट था वो तो ऐसा लग रहा था कि ये रनों से भरपूर है, और वेस्टइंडीज ने इसका मुजाहरा भी किया। किरण पवल ने 51 रन बनाए, और उसके बाद जो पुछल्ले बल्लेबाज थे किमार रोज वो 26, और देवेंद्र बिशू भी 22 रन बनाकर नाबाद रहे।
और भारत के गेंदबाज भी आज बहुत खास चले नहीं, युजवेंद्र चहल के अलावा।
जी हाँ, उन्होंने 41 रन देकर 3 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने 81 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन खलील अहमद ने फिर भी प्रभावित किया। पहला ही वो वनडे मैच खेल रहे थे अपना इंटरनेशनल लेवल पर, और 64 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। जडेजा ने अपनी फिरकी से लुभाया, उन्होंने 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। लेकिन आज एक बहुत ही निराशाजनक समाचार ये रहा कि डेनमार्क ओपन के फाइनल में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल चीन ताइपे की ताइजू यिंग से 21-13, 13-13, 21-21 से हार गई। लेकिन हॉकी के मैदान में कल देर रात एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। आज भारत का सामना जापान से होगा।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, खेल समाचार बता रहे थे। चलते चलते खास खास खबरें फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के गठन की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरंगा फहराया। 21 अक्टूबर को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उत्तरी ताइवान में एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जॉर्डन ने इसराइल से कहा है कि साल 1994 में हुए शांति समझौते के तहत इसराइल को सीमा के नज़दीक 25 साल के लिए पट्टे पर दी गई जगहों को वो फिर से अपने कब्जे में लेना चाहता है। जॉर्डन की सरकारी एजेंसी के अनुसार किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि अल बकूरा और अल घमर हमेशा से जॉर्डन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इसराइली कैबिनेट ने कहा है कि वेस्ट बैंक में मौजूद बोडोविन अरब जनजातीय समूह के लोगों के गांव खान अल अहमर खाली कराने की योजना को फिलहाल कुछ सप्ताह के लिए रोका जा रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचा रहे थे कपिल देव सिंह।
देश दुनिया की खबरों और विश्लेषण के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ, और कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।